ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। चौथा स्कंद 24वां अध्याय, भगवान शिव द्वारा की गई स्तुति का गान। श्रीरुद्र उवाच, यूयं वेदिषदः पुत्रा विदितं वश्चिकीर्षितम् अनुग्रहाय भद्रं वा एवं मे दर्शनं कृतम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद: शिवजी ने कहा, तुम सभी प्राचीन बरही के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं जानता हूँ कि तुम क्या करने जा रहे हो, अतः मैंने तुम पर कृपा करने के लिए ही अपना दर्शन दिया है। तात्पर्य: इन शब्दों से शिव इंगित करते हैं कि जो कुछ राजकुमार करने वाले हैं वह उन्हें पहले से ज्ञात था। वास्तव में वे कठिन तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने जा रहे थे। यह जानकर शिवजी तुरंत ही अत्यधिक प्रसन्न हुए, जैसा कि अगले श्लोक से विदित होगा। इससे सूचित होता है कि जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है किंतु उनकी सेवा करना चाहता है, उसे शिव जैसे प्रमुख देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अतः भगवत भक्त को अलग से देवताओं को प्रसन्न नहीं करना पड़ता, मात्र परमेश्वर की आराधना द्वारा वह उन सबों को प्रसन्न कर सकता है। उसे देवताओं से भी किसी आशीर्वाद की याचना नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि देवतागण प्रसन्न होकर स्वतः सब कुछ प्रदान करते हैं। देवता जो भगवान के दास हैं, अतः वे सभी प्रकार से भक्तों की सहायता के लिए उद्यत रहते हैं। इसीलिए श्रील बिल्वमंगल ठाकुर ने कहा है कि यदि मनुष्य परमेश्वर की शुद्ध भक्ति करता है तो भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करने वाले देवों की बात तो दूर रही, मुक्ति की देवी तक उसकी सेवा के लिए तैयार रहती है। अतः कृष्ण के भक्त को किसी ऐश्वर्य या मुक्ति के लिए प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। वह भक्ति के देवी पद पर रहकर धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के सारे लाभ प्राप्त कर सकता है। अनुवाद को दोहराइए। हरे कृष्णा। अब तक श्रीमद् भागवत के इस अध्याय में हम सुनते आए हैं कि किस तरह से राजा प्राचीन बरही के 10 पुत्र तपस्या करने हेतु जंगल में गए थे। उन्होंने एक बहुत सुंदर सरोवर देखा, बहुत ही रम्य मधुर वातावरण था, नाना प्रकार के पक्षियां, फूल इत्यादि। और ऐसे वातावरण में अचानक महादेव श्री शिव जी प्रकट होते हैं। ये शिव जी की ही लीला है कि आज शिवरात्रि का दिवस है और आज ही हमारे क्रम से भागवत के श्लोक में शिव जी पहली बार प्रकट हो रहे हैं, प्रचेतों के सामने प्रकट हुए। और क्योंकि उनके वचन में और व्यक्तिगत उपस्थिति में कोई अंतर नहीं है, इसलिए हम ये भी समझ सकते हैं कि शिवजी हमारे सामने भी प्रकट हुए हैं। और आप सब प्रचेतागण की तरह तपस्या हेतु इस मंदिर में आए हैं भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए। और शिवजी प्रचेताओं को बोल रहे हैं कि मैं जानता हूं कि तुम क्या करने जा रहे हो, अतः मैंने तुम पर कृपा करने के लिए ही अपना दर्शन दिया है। तो शिव जी परम वैष्णव हैं, इसलिए जहां भी वो देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण या विष्णु की सेवा करने के लिए कोई लोग आतुर होते हैं तो तुरंत वहां पर उपस्थित होकर उन भक्तों के ऊपर कृपा बरसाते हैं। तो शिवजी भी जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं। यहां शिवजी बता रहे हैं, मैं जानता हूं कि तुम क्या करने जा रहे हो। दूसरे शब्दों में शिवजी जानते हैं कि हम रथ यात्रा करने जा रहे हैं। शिवजी ये भी जानते हैं कि हमारे हृदय में भक्ति के अलावा और कौन सी इच्छाएं भी हैं, शुद्ध भक्ति के अलावा। शिवजी त्रिकालज्ञ हैं। वैसे भगवान हैं भी और नहीं भी। शिवजी का स्थान बीच का स्थान है, तटस्थ स्थान है उनका, भगवान में और जीव में। वैसे तो विष्णु तत्व है, जिसमें सारे भगवान श्री कृष्ण और उनके अन्य अवतार हैं, और फिर जीव तत्व है, लेकिन ये शंभु तत्व बीच वाला है। क्षीरम यथा तथिविकार विशेष योगात संजायते नहीं तथा पृथक अस्ति हेतो। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं कि जिस तरह से दूध का परिवर्तन किसी विकार से जब दही में हो जाता है, तो दोनों दूध और दही एक भी हैं और भिन्न भी हैं। क्योंकि दूध में और दही में एक दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, दही दूध से ही बना हुआ है। केवल थोड़ा विकार जब दूध में आ जाता है तो वो दही बन जाता है। है एक ही, लेकिन फिर भी जब उपयोग करते हैं तो उसके भिन्न परिणाम हो सकते हैं। जब किसी की पेट की बीमारी होती है, एक तरह की पेट की बीमारी होती है तो उसके लिए दही लेना पड़ता है, और दूसरे तरह की पेट की बीमारी होती है तो उसके लिए दूध लेना पड़ता है। दूध लेने की जगह अगर दही लें या दही लेने की जगह दूध लें तो परिणाम बिल्कुल विपरीत होगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि अपने कार्यों में ये दूध और दही अलग हैं, हालांकि ये है एक ही चीज। ठीक उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण और शिवजी में कार्यों में अंतर है, स्तर में अंतर है, लेकिन शिवजी आते हैं श्री कृष्ण से ही। शिवजी वास्तव में सदाशिव के अंश हैं। सदाशिव भगवान श्री कृष्ण के एक विष्णु रूप हैं, वैकुंठ लोकों में चतुर्भुज रूप हैं सदाशिव जी, और शंभु ये सदाशिव के विस्तृत रूप हैं, अंश हैं। इसलिए शंभु भौतिक सृष्टि के समय भी बहुत योगदान करते हैं, भगवान की सहायता करते हैं, उनका निमित्त बनकर यहाँ सृष्टि के निर्माण का कार्य करते हैं। जब अनंत कोटि ब्रह्मांडों का निर्माण होता है उस समय शंभु तत्व आते हैं और फिर हर एक ब्रह्मांड में शिवजी के रूप में प्रकट होते हैं। तो इस तरह से शिवजी का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस तरह से उनका स्थान जीव तत्व और विष्णु तत्व के बीच में है, ठीक उसी तरह से उनका धाम भी इस भौतिक सृष्टि और वैकुंठ लोक के बीच में है। भगवान श्री विष्णु इस भौतिक ब्रह्मांड में निवास करते हैं, श्वेत द्वीप में। इस ब्रह्मांड के भीतर भी एक वैकुंठ लोक है, जहां पर क्षीरोदक्षाय विष्णु विराजे हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें स्पष्ट ज्ञान दिया है कि ये जो भौतिक सृष्टि है नश्वर है। अव्यक्त क्षर उत्युक्त स्तम आहु परमाम गतिम। लेकिन इस अव्यक्त और व्यक्त जगत के परे भी एक और जगत है, वो आध्यात्मिक जगत है, और उस आध्यात्मिक जगत में सारे वैकुंठ लोक हैं, और उन वैकुंठ लोकों में से प्रमुख गोलोक वृंदावन है। और यहां ये जो सब नश्वर है, यह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। ये सब जब नष्ट हो जाता है, ये भौतिक संसार, तो वो संसार नष्ट नहीं होता, वो जगत नष्ट नहीं होता है, वो भगवान का शाश्वत धाम है। लेकिन फिर भी उस शाश्वत धाम का एक अंश भगवान श्री कृष्ण इस नश्वर ब्रह्मांड के भीतर प्रकट करते हैं। तो ये भौतिक ब्रह्मांड के भीतर वैकुंठ लोक है। ध्रुव महाराज को भगवान ने वरदान प्रदान किया, उनको ध्रुव लोक दिया, और ध्रुव लोक भी ये वैकुंठ लोक है। जब ये सारे ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में, तो ये ध्रुव लोक नष्ट नहीं होगा, ये रहेगा वैसे ही। नश्यत्सु न विनश्यति, ब्रह्मांड नष्ट होता है लेकिन ये वैकुंठ लोक नष्ट नहीं होते हैं। तो शिव जी का लोक शिवलोक ये भी बीच का है। जिस तरह से शिव जी का स्थान जीवात्मा और विष्णुलोक के विष्णु तत्व के बीच में है, उसी तरह से शिवलोक जो है वो भौतिक लोक और वैकुंठ लोकों के बीच के स्तर का है। बताया जाता है कि जो 100 जन्मों तक बड़ी अच्छे ढंग से अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है पूरी अच्छी तरह से, तो उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, और उसके बाद आगे चल के हो सकता है उसे प्रगति होकर शिवलोक की प्राप्ति हो सकती है। तो ये है शिवजी का स्थान और शिवलोक का स्थान। तो शिवजी एक साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण देवता नहीं है, इसलिए उनको महादेव कहा गया है। केवल देव नहीं, महादेव, देवताओं में से सबसे महान देव। वैसे तो ब्रह्मा जी के पुत्र कहलाते हैं, लेकिन देखा जाए तो ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ उनका पद है। इस तरह से शिव जी सब कुछ जानते हैं, त्रिकालज्ञ हैं, भूत वर्तमान काल और भविष्य काल सब जानते हैं। इसलिए वो पहचान गए कि ये प्रचेता कण जो हैं, ये किस लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो संकर्षण के भक्त हैं। संकर्षण भी भगवान का रूप है। छठे स्कंद में ये वर्णन आता है कि किस तरह से संकर्षण ने महाराज चित्रकेतु को भी दर्शन दिया था, और संकर्षण के अवतार होने के नाते या उनका अंश होने के नाते शिवजी उनका ही ध्यान करते हैं, और ध्यान करते हुए वो शुद्ध भक्ति में हमेशा मग्न रहते हैं। हम देखते हैं कि शिवजी की तस्वीर जब बनाई जाती है तो ज्यादातर शिवजी को एक पेड़ के नीचे बैठे हुए ध्यान में दिखाया जाता है। तो किसके ऊपर ध्यान करते हैं, वो अपने आराध्य देव हैं संकर्षण जी। तो क्योंकि वैष्णव दूसरों वैष्णवों को देखकर बड़ा प्रसन्न होता है, तो ठीक उसी तरह से जब शिवजी ने देखा कि प्रचेता गण भगवान विष्णु की सेवा करने के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। कभी कभी ऐसे होता है कि देवता गण रुकावटें डालती हैं भगवान की सेवा में, और कभी कभी आके उनको प्रोत्साहन देते हैं। जब इंद्रदेव ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन होने जा रहा था, गोवर्धन की पूजा होने वाली रही थी और उनका यज्ञ अभी कैंसिल हो गया था, तो उनको बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने अड़चन डालने का प्रयास किया। लेकिन शिवजी यहां ऐसे नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि शिवजी का स्थान इंद्रदेव से बहुत ऊंचा है। शिवजी इस तरह से मोहित नहीं होते जैसे इंद्रदेव हो जाते हैं, क्योंकि शिवजी बड़े धीर व्यक्ति हैं। हम जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था, लेकिन इंद्रदेव ऐसे नहीं कर सकते। इसलिए शिवजी इतने महान वैष्णव होने के नाते कभी भी वैष्णवों से ईर्ष्या नहीं करते हैं। इंद्रदेव वैष्णव हैं, लेकिन पूरी तरह से शुद्ध वैष्णव नहीं है, इसलिए उनके हृदय में अलग भावनाएं भी होती हैं, अन्य कामनाएं होती हैं, भोग की कामना। और जिस व्यक्ति के हृदय में भोग की कामना होती है वो कभी भी ईर्ष्या से मुक्त नहीं हो सकता है। तो इसलिए इंद्रदेव के हृदय में भी कभी कभी ईर्ष्या की भावना जागृत हो जाती है, द्वेष की भावना, जैसे कि महाराज पृथु के प्रति हुआ था। लेकिन महाराज भगवान शिव जो हैं, वो कभी भी वैष्णवों से ईर्ष्या नहीं करते हैं। क्या हमने कभी पढ़ा है कि शिवजी ईर्ष्या करते हैं वैष्णवों के ऊपर? नहीं। इंद्रदेव ने जब ईर्ष्या की है भगवान के भक्तों के ऊपर, ऐसे कई बार हम पढ़ चुके हैं, लेकिन शिवजी ऐसे कभी ईर्ष्या नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है कि वो इतने महान वैष्णव है। महान वैष्णव का गुण होता है कि वो निर्मत्सर होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो है ये केवल ऐसे निर्मत्सर लोगों के लिए है। धर्म प्रोज्जित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वास्तवम वेद्यम वास्तवमस्तवत्र शिवदं तापत्रयोन्मूलनम। तो श्रीमद् भागवत उन लोगों के लिए है जो निर्मत्सराणाम है, और श्रीमद् भागवत में अन्य सारे जो धर्म हैं उनको त्याग किया गया है, जिनमें कि भगवान की शुद्ध सेवा का उल्लेख नहीं आता, और उनको कहा जाता है कैटव धर्म। कैटव धर्म मतलब धोखेबाजी का धर्म। एक भक्त हमें बता रहे थे कि वो कहीं दक्षिण भारत में थोड़े दिन पहले गए थे और वहां पे किसी देवी को बलि चढ़ाकर लोग मांस खाते थे। वहां कहते तो हैं लोगों की हम धर्म के लिए जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनकी इच्छा होती है कि बकरी को काट कर खाएं और शराब पिए। और हजारों की संख्या में ये समाज के लोग जाते हैं वहां पर। इनका एक साल में एक बार बड़ा उत्सव होता है, तो वो भक्त बता रहे थे कि इतना साफ नजर आ रहा था कि ये लोग भगवान के नाम पे अपनी इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, इसलिए धर्म का नाम उठाकर ये सब पाप काम करते हैं। तो ये सारे जो धर्म हैं उनको त्याग किया गया है श्रीमद् भागवत में। धर्म प्रोज्जित कैटवत्र परमो, एक कैटव धर्म है, धोखेबाजी का धर्म है। लेकिन पर धर्म क्या है, ये श्रीमद् भागवत का धर्म है, और इसलिए ये केवल निर्मत्सराणाम उन लोगों के लिए है, क्योंकि जो इस श्रीमद् भागवत का विषय है कोई देवी देवता नहीं है। वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनो, जो वास्तव में असली वस्तु है उनके बारे में है। असली वस्तु कौन है, श्री कृष्ण है। वास्तवम अत्र वस्तु, जो सचमुच सच्चा है उसके बारे में श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। वास्तवम अत्र वस्तु, ये वस्तु मतलब क्या, जो वास्तव में है, जो वास्तविक चीज है उसको वस्तु कहते हैं। साधारणतः साधारण भाषा में वस्तु मतलब कोई भी चीज को हम वस्तु कहते हैं, ये वस्तु है, ये वस्तु है। लेकिन सचमुच देखा जाए तो वस्तु मतलब जो जिसका अस्तित्व है, सचमुच जिसका अस्तित्व है। लेकिन ये संसार के नाम और रूप, इनका सचमुच अस्तित्व नहीं है। ये संसार के नाम रूप परिवर्तनशील हैं। ये जो माइक्रोफोन है ये हमेशा माइक्रोफोन नहीं था, थोड़े दिन पहले किसी ने थोड़े पदार्थों का परिवर्तन करके इसके माइक्रोफोन बनाया, और हमेशा के लिए माइक्रोफोन नहीं रहेगा ये, एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। तो ये वस्तु है लेकिन फिर भी वस्तु नहीं है। लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा क्या है, वास्तवम अत्र वस्तु, जो वास्तव में वस्तु है, जो सचमुच सच है, ये झूठा सच है। और भगवान श्री कृष्ण सचमुच सच है, सत्य है। तो ऐसे सत्य विषय के बारे में ये श्रीमद् भागवत में चर्चा आती है। और सचमुच सच्ची वस्तु कौन है, मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइवा। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सत्यों में से मैं परम सत्य हूं, मत्तः परतरम न अन्यत, मेरे से ऊंचा कोई सत्य नहीं है, मैं सबसे ऊंचा सत्य हूं। इसलिए जो श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं, वो भी सत्य में स्थित हो जाते हैं। इसलिए अन्य कोई भी धर्म ये झूठे धर्म है, क्योंकि वो झूठ में स्थित होते हैं, वास्तव अत्र वस्तु में स्थित नहीं होते हैं, झूठ में स्थित होते हैं, संसार के परिवर्तनशील चीजों में स्थित होते हैं। देवी देवताओं के उपासकों की बात तो दूर है, वो तो नश्वर और क्षणभंगुर तो है ही, लेकिन जिन व्यक्तियों की उपासना वो करते हैं वो भी क्षणभंगुर है, वो भी क्षणिक है। देवी देवताओं का भी जन्म होता है, उनका भी मरण होगा, और जो वरदान देते हैं वो भी क्षणिक है। लेकिन वैष्णवों का ऐसा नहीं है, क्योंकि वैष्णव उस व्यक्ति की पूजा करते हैं जो कि शाश्वत है, कृष्ण भगवान, और जो वरदान कृष्ण भगवान देते हैं वो भी शाश्वत है। इसलिए केवल कृष्ण भगवान के भक्त वो शाश्वत हो जा सकते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भगवान की भक्ति करता है वो अमर है। क्या इसका मतलब है कि उसकी मृत्यु नहीं होगी, होगी, शरीर का नाश तो होना ही है, लेकिन इस शरीर के नाश के बाद में वो अमर जीवन को प्राप्त करेगा, भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। ये है वैष्णव के गुण। इसलिए इस जीवन में रहते हुए भी वैष्णव को मुक्त कहना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी वैष्णव का भौतिक शरीर है तो कैसे मुक्त होना हो सकता है। यहा यस्य हरिर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जो हरि का दास है, यह यस्य हरिर्दास्य, जो हरि का दास है, कर्मणा मनसा गिरा, अपने कर्मों से, अपने मन से, अपने तन से जो भगवान श्री हरि की सेवा करते रहता है पूरे समय, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च, जो हमेशा भगवान की सेवा ऐसे करते रहता है, जीवन मुक्त स उच्यते, जीते हुए भी उसे मुक्त कहलाना चाहिए। ये है हरिदास। हरिदास होना कोई आसान बात नहीं है, वैष्णव होना भी आसान चीज नहीं है। तो ये सारे चीजें आसानी से भगवान के श्री कृष्ण के भक्त के पास आ जाते हैं। प्रभुपाद यहां तात्पर्य में बता रहे हैं कि बिल्वा मंगल ठाकुर ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त के लिए, वैष्णव के लिए मुक्ति स्वयं आ जाती है। कृष्ण कर्णामृत में बिल्वा मंगल ठाकुर का श्लोक है, मुक्ति ही स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मान, कि भक्त जो वैष्णव होता है, मुक्ति देवी स्वयं आती है, मुक्ति ही स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मान, अंजलि मत अंजलि प्रांजलि मुद्रा में हाथ जोड़कर मुक्ति देवी सामने आती हैं और क्या कहती हैं, सेवते अस्मान, मेरी सेवा स्वीकार कीजिए, मैं आपको मुक्ति प्रदान करना चाहती हूं। लेकिन भक्त क्या कहते हैं, सॉरी रॉन्ग नंबर, मेरे मुक्ति के लिए समय नहीं है, मुक्ति की कोई इच्छा नहीं मुझे, मुझे केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा चाहिए। ये है वैष्णव। तो जब मुक्ति को ठुकरा देते हैं वैष्णव, धर्मार्थ कामा गतयो स्मय प्रतीक्षा, तो धर्म अर्थ काम की बात तो दूर है। इसलिए बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं कि जिस तरह से मुक्ति देवी आती है तो उनके साथ साथ धर्म अर्थ काम भी मूर्तिमान रूप में आते हैं, मुझे स्वीकार कीजिए, सारे प्रकार के काम उपलब्ध होते हैं, आइए भोग कीजिए, आपको सब उपलब्ध होगा, धर्म अर्थ काम सब कुछ आ जाता है। मुक्ति देवी एक महारानी की तरह है। अब महारानी जब जाती है तो अकेली जाती है कहीं नहीं, उनके साथ में कौन होते हैं, दासियां होती है ना। तो मुक्ति देवी अगर महारानी है तो उनके साथ में, उनके दासियों में तीन प्रमुख हैं, उनको धर्म अर्थ काम बोलते हैं। धर्म मतलब कौन सा धर्म, ये भागवत धर्म नहीं, कैटव धर्म, मतलब वो धर्म जो कि अर्थ और काम के लिए किया जाता है। और साथ में ये जो तीन इनकी रानियां हैं, धर्म अर्थ और काम, ये तीनों ये दासियां उनके पीछे पीछे आती हैं। जहां रानी जाती है वहां पे दासियां जाते हैं। तो जहां भक्त की सेवा के लिए साक्षात मुक्ति देवी हाजिर हो जाती है, हाथ जोड़कर मुझे स्वीकार कीजिए, तो स्वाभाविक है कि धर्म अर्थ काम भी उनके पीछे पीछे आएंगे, भक्त के पास मुझे स्वीकार कीजिए। लेकिन भक्त के लिए समय नहीं है। तो ऐसे भक्त का संग करना हमारे लिए कितना मूल्यवान है। तुल्याम लवेणापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किम उताशिषः। ऐसे भक्त का क्षण लवेणापि, लव मतलब क्षण से भी कम, तो शुद्ध भक्त का हम क्षण से भी कम जब संग करते हैं तो इसकी तुलना स्वर्ग से भी नहीं कर सकते। न अपुनर्भवम, अपुनर्भवम मतलब मुक्ति या मोक्ष, पुनर्भव मतलब बार बार जन्म लेना, अपुनर्भव मतलब बार बार जन्म नहीं लेना, इसका मतलब है कि जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाना। न स्वर्गम न अपुनर्भवम, तो ऐसे शुद्ध भक्त की एक लव मात्र संग करने से स्वर्ग प्राप्ति की तुलना तो नहीं कर सकते उसे, और मुक्ति की भी तुलना नहीं कर सकते। तो मर्त्या नाम किम उताशिषः, ते भौतिक संसार के जो आशीष हैं, आशीर्वाद हैं, वरदान हैं, उनका तो क्या कहना। इस तरह से ये वैष्णव की महिमा है, गुणगान है शास्त्रों में। इसलिए जो वैष्णव बन जाता है, भक्त बन जाता है भगवान श्री कृष्ण का, स्वाभाविक तौर से उनके पीछे पीछे ये सेवा करने के लिए हाजिर हो जाती हैं सब। हम देखते हैं प्रत्यक्ष रूप में जब कोई भक्त बनते हैं, प्रभुपाद जी बताया करते थे कि देखो पहले ये जो मेरे शिष्य थे सारी बुरी आदतें करते थे, कितने गंदे लगते थे, अभी देखो वैष्णव बन गए हैं तो उनके चेहरे पर कितना तेज है, कितना सौंदर्य इनका बढ़ गया है। और फिर जब भक्ति करते हैं तो आदमी को प्रतिष्ठा मिल जाती है, लोग इनके पास आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं, उनकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं। अगर वो व्यक्ति भक्त न होता तो ऐसे उसको प्रतिष्ठा नहीं मिलती, लेकिन भगवान का भक्त बन गया है तो समाज में लोग जानने लगते हैं उसको कि ये भक्त है, कितनी प्रतिष्ठा मिलती है समाज में। और क्योंकि व्यक्ति भगवान का भक्त होता है तो आर्थिक दृष्टि से भी भगवान नाना प्रकार की सहायता करते हैं। कई लोगों ने अनुभव बताया आकर कि जब से हम कृष्ण मंदिर में आने लगे हमारा व्यवसाय अच्छा होने लगा। हाँ, जब आगे भक्ति में बढ़ेंगे तब भगवान उनकी कृपा अलग तरह से दिखाएंगे, नहीं? तब हो सकता है कि वो कुछ वापस ले लें। यह भगवान की असीम कृपा होती है। तो खैर, इसलिए हमें कभी भी भक्ति करने के बल पर जो भी हमारे पास भौतिक सुविधाएं, प्रतिष्ठा इत्यादि आ जाता है उससे कभी भी प्रभावित नहीं होना चाहिए, और ये दूर की बात है कि कभी इनको इंद्र तृप्ति में नहीं लगाना चाहिए। श्रीमद् भागवत में बताया जाता है, धर्मस्य आपवर्ग्यस्य नार्थोऽर्थायुपकल्पते धर्मस्य एकांतस्य कामो लाभाय हि स्मृतः, कि धर्म जो किया जाता है मुक्ति के लिए किया जाता है, मतलब ये संसार से मुक्त होकर भगवान की सेवा के लिए किया जाता है। न अर्थ अर्थाय उपकल्पते, न मतलब कोई भौतिक चीज की प्राप्ति के लिए नहीं करना चाहिए धर्म। जो भौतिक प्राप्ति के लिए किया जाता है वो कैटव धर्म है, धोखेबाजी का धर्म है। इसलिए धर्म के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए केवल भगवान की सेवा के लिए, न कि किसी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए। और ऐसे अगर भौतिक सुविधाएं आ भी जाती हैं श्री श्री राधा गोकुलानंद की, अगर कोई भौतिक सुविधाएं आ भी जाती हैं भक्ति करने के माध्यम से, तो उनको कामो लाभाय ही स्मृत, उनको इंद्र तृप्ति में नहीं लगाना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम व्यवसाय कर रहे हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के भक्त बन गए किसी भक्तों के प्रभाव से, और हमारा बिजनेस चमकने लगा, धन आ गया, तो हमें नहीं सोचना चाहिए चलो अच्छा हो गया, अभी ये हमारी इंद्र तृप्ति में ज्यादा से ज्यादा लगाएं और ऐश करें। नहीं, भगवान की कृपा से जो धन मिला है उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, वो नहीं लगाएंगे तो वो भी छीन लेंगे भगवान। उसी तरह से अगर हमें कोई प्रतिष्ठा मिलती है इत्यादि, तो वो भी भगवान की सेवा के लिए ही लगाना चाहिए। अगर हम सोचेंगे कि हम अपना कॉलर ऊंचा करके चलेंगे कि हम प्रतिष्ठित हो गए, अभी लोग हमको जानने लगे, तो फिर हमारा नाश हो जाएगा, भक्ति में हम टिक नहीं पाएंगे। तो इस तरह से ये भक्ति ये एक तलवार है जिसके दोनों तरफ में धार है। तो जो व्यक्ति धार से बचकर रहता है वो सुरक्षित होकर अपने भक्ति में प्रगति करेगा, लेकिन जो व्यक्ति भक्ति में लापरवाही करता है तो फिर क्या होता है, जो सुविधाएं प्रतिष्ठा लाभ इत्यादि भक्ति करने से स्वाभाविक तौर से प्राप्त हो जाती हैं वो ही उसके नाश का कारण बन जाएंगे। क्योंकि प्रतिष्ठा इत्यादि से गर्व अभिमान हो जाता है, अहंकार बढ़ जाता है, और उस अहंकार से आदमी अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगता है और दूसरों को निम्न श्रेणी का, और ऐसे अवस्था में व्यक्ति वैष्णव अपराध कर सकता है। यहां पे हमारे नोटिस बोर्ड में अंग्रेजी में एक सुंदर बात कही गई है, इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है, अगर भगवत प्रेम आपका उद्देश्य है तो वैष्णव अपराध से बच के रहिए, है ना। तो सबका उद्देश्य यहां इस मंदिर में है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, इसलिए हम सबसे ज्यादा इस चीज से हमें घबरा कर रहना चाहिए, वैष्णव अपराध से। तो शिव जी यहां बता रहे हैं कि वैष्णव को प्रसन्न करना बहुत आसान होता है। शिव जी केवल ये देख रहे हैं कि इनकी इच्छा है भगवान की सेवा करने के लिए, तुरंत आ गए वहां पर। ये वास्तव में जगत गुरु हैं, शिव जी सारे जगत के गुरु हैं, ये परम वैष्णव होने के नाते। तो इसलिए शिव जी की कृपा आज हमें मिल सकती है अगर हम ये हृदय में तय कर लें कि हमें हमारे भक्ति से कोई भौतिक लाभ नहीं लेना है, हमें केवल भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की अप्रतिहता सेवा करने के लिए इच्छा रखनी है। हमारे मन में अगर हमने ये निश्चय कर लिया, कम से कम एक तीव्र इच्छा बना ली, भले हमारे अंदर से भौतिक इच्छाएं तुरंत नहीं चली गई हो, लेकिन इच्छा तो कर सकते हैं। ऐसी तीव्र इच्छा करके अगर हम भगवान शिव की प्रार्थना करेंगे, उनकी कृपा याचना करेंगे, तो जिस तरह से अपना अनुग्रह उन्होंने इन प्रचेताओं के ऊपर दिया है, उसी तरह से वो हमारे पास भी आकर हमारे हृदय में ऐसी कृपा बरसा सकते हैं। तो आज शिवरात्रि के पावन दिवस पर हम ये शिव जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें अच्छे शुद्ध वैष्णव वो बनाए और उन्हीं के पद चिन्हों में हम चलें। शिव जी का एक महान गुण है कि वो भूतनाथ हैं। भूतनाथ के दो अर्थ होते हैं। भूत संस्कृत में मतलब सारे प्राणियों को कहते हैं, और भूत भूत भी होता है, दो तरह के भूत। तो दोनों के स्वामी हैं शिव जी, क्योंकि वो वैष्णव हैं, भगवान के गुणावतार हैं, इसलिए सारे प्राणियों के गुरु हैं, और क्योंकि वो तमोगुण के भी अधिष्ठाता देव हैं, इसलिए सारे भूत प्रेत पिशाचों के और जो भी तमोगुण प्रवृत्ति के लोग हैं उनके भी वो अधिष्ठाता देव हैं। खास करके उनके ऊपर कृपा करने के लिए शिवजी ने बड़ी तपस्या की है। बड़ा कठिन है तमोगुणी लोगों को का देखभाल करना, बहुत कठिन। रजोगुणी लोगों का देखभाल करना कठिन तो है, लेकिन तमोगुणी लोगों से थोड़ा अच्छा है। सत्वगुणी लोगों का देखभाल करना आसान हो जाता है। तो शिवजी सबसे कठिन कार्य कर रहे हैं संसार में, सारे भूत प्रेत पिशाचों का देखभाल करते हैं। भूत प्रेत पिशाच कौन होते हैं? सारे अतृप्त आत्मा होते हैं। अतृप्त अवस्था में दंगा करते रहते हैं इधर उधर। तो शिवजी इतने कृपालु हैं कि ऐसे पतित जीवों के लिए भी वो कृपा देते हैं। इसलिए आप देखते हैं हमेशा स्मशान भूमि का जो की धूली है अपने शरीर पे लगाए रहते हैं, ताकि उनके बीच में उनको घूमना फिरना है। भूत प्रेत पिशाच तो स्मशान घाट में ज्यादा रहते हैं, तो इधर इसलिए वहां शिवजी घूमते फिरते रहते हैं। तो शिवजी की इतनी कृपा है कि वो ऐसे लोगों के बीच में रहकर उनका उद्धार करना चाहते हैं। हमें तो शिवजी की नकल नहीं करनी चाहिए। हम तो एक रात स्मशान भूमि में रहेंगे तो हमारी दुर्दशा हो जाएगी। और शिवजी तमोगुण लोगों को जिस तरह के उद्धार करते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें यहां बहुत अच्छा संग चाहिए। हमें एक सात्विक और विशुद्ध सात्विक वातावरण चाहिए। इसलिए हमें भक्तों का संग चाहिए। ऐसे भक्तों के संग में आकर हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो हम शिव जी को यह भी प्रार्थना कर सकते हैं कि कृपा करके हमें आप हमेशा वैष्णव के संग में रखिए, और हमें वो बुद्धि दीजिए कि हम कभी भी वैष्णवों के प्रति अपराध नहीं करें, ताकि हमारी भक्ति में गाड़ी अच्छी तरह से चलती रहे। भगवान श्री शिव जी की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। कोई टीका टिप्पणी प्रश्न? बाणासुर का पक्ष लेकर जब शिवजी ने कृष्ण भगवान के विरुद्ध युद्ध किया, तो क्या ये एक लीला थी? अवश्य लीला है। और एक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान बद्ध थे, शिवजी बद्ध थे, क्योंकि बाणासुर उनका भक्त था। तो भक्त की रक्षा करना काम था उनका, कर्तव्य बनता था, तो आना ही पड़ा उनको। इसलिए शिवजी को कितना कष्ट उठाना पड़ता है कि उनके ही भक्त उनको ही कठिनाई में डालते हैं। कितनी बार ऐसे हुआ? भौमासुर की कथा तो आप जानते हैं, शिव जी ने बड़े उदार होकर वरदान दिया, ठीक है जो चाहिए मांगो। और फिर भस्मासुर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं जिसी का सर का स्पर्श करूं वो भस्म हो जाए। और जैसे ही वो वरदान मिला शिव जी के पीछे ही भागने लगे। तो देखिए शिव जी को कितनी तपस्या, कैसे कैसे लोग मिलते हैं उनको, और ये भस्मासुर ने कैसी तपस्या की, वो अपना मांस काट कर, शरीर का मांस काट कर जो है अग्नि में अर्पण आहुतियां दे रहा था। और शिव जी बोल रहे थे कपाल में हाथ डालकर, कैसे कैसे मेरे भक्त है, किन किन का देखभाल मुझे करना पड़ता है, कैसे तमोगुणी प्रवृत्ति के लोग। लेकिन फिर भी शिव जी बड़े सहनशील हैं। जो भी शिव जी की भक्ति करके वरदान प्राप्त करता है शिव जी के लिए सरदर्द बन जाते हैं। अब हिरण्यकश्यप, रावण, रावण भी तो बड़े शिव जी के भक्त थे, लेकिन कितना हल्ला उपद्रव मचा दिया सारे ब्रह्मांड भर में रावण ने, तो शिव जी को अच्छा नहीं लगता ये सब। शिव जी भी वैष्णव है, और जब रावण इत्यादि शिवजी से प्राप्त हुए वरदानों को वैष्णवों के खिलाफ ही इस्तेमाल करते हैं तो शिवजी को कितना बुरा लगता है। लेकिन क्या करें, किसी न किसी तरह से वो उनका उद्धार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बाणासुर भी ऐसे ही शिवजी के भक्त थे, और उन्होंने शिवजी से वरदान प्राप्त कर लिया। अभी शिवजी के आराध्य देव कृष्ण से युद्ध करने जा रहे हैं, तो अभी कैसी परिस्थिति हो गई। तो ये शिवजी इतने सहनशील हैं, बड़े कृपालु हैं, तो उनके भक्त उनको हमेशा कष्ट में डालते हैं। लेकिन हम शिवजी को उस दृष्टि से नहीं देखते हैं, हम शिवजी को कष्ट में नहीं डालना चाहते, हम शिवजी से केवल उनकी कृपा चाहते हैं कि हम उनके चरणों की सेवा करें कृष्ण के गुणगान के लिए, हम अच्छे भक्त बने, यही हम चाहते हैं शिवजी से। ठीक है, और कोई प्रश्न है? टीका जी, क्योंकि उनका काम है, उनकी सेवा है तमगुणी व्यक्तियों की का उद्धार करना। जैसे प्रभुपाद जी जब पश्चिम देशों में गए थे, हजारों लोगों को दीक्षा दी उन्होंने, वो जानते थे कि ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, इनको चार नियम का पालन करना तो बहुत कठिन है। लेकिन फिर भी वो जानते हुए भी कि कई लोग इनमें से गिरने वाले हैं, भक्ति से पथभ्रष्ट होने वाले हैं, उन्होंने दीक्षा दी उनको। उनको मालूम था कि जब ये दीक्षा लेकर उनका पतन होगा, पाप करेंगे, वो पाप का बोझ मेरे ऊपर आएगा। वो जानते थे कि कई लोग, 10,000 लोगों को उन्होंने दीक्षा दे दी करीब करीब, उनमें से कितने लोगों का पतन हुआ, कितने लोग फिर से पाप कार में रत हो गए। तो प्रभुपाद ने सोचा, नहीं, मेरा कार्य है, कर्तव्य है, भगवान श्री कृष्ण का, मेरे गुरु महाराज का प्रतिनिधि बनकर मुझे सबका उद्धार करना है। अब कोई ये बोझ नहीं उठाएगा, मैं नहीं उठाऊंगा, कौन उठाएगा, कोई तो है नहीं सामने, तो उनको करना पड़ा। हालांकि उनको मालूम था, क्योंकि उनका कर्तव्य था, और क्योंकि इतने भक्तों का पतन हो गया तो उनको कितना कष्ट हुआ, फिर भी उन्होंने किया। ठीक उसी तरह से शिवजी को मालूम होता है, लेकिन किसी न किसी तरह से इन तमोगुण व्यक्तियों का उद्धार करना है। और जब इनका नाश हो जाता है तो भगवान के हाथों नाश हो जाता है, तो उनका उद्धार हो जाता है उस दृष्टि से। तो ये शिवजी का स्थान है। और कोई बात? नहीं, प्रलय के बाद शिवधाम, शिवलोक नहीं चले जाता है। शिवलोक का स्थान इस भौतिक ब्रह्मांड और वैकुंठ लोक के बीच का है, विशेष स्थान है इसका। अगर आप ब्रह्म संहिता गौर से पढ़ेंगे तो इसके बारे में शिवजी का उगम स्थान क्या है इत्यादि, इसके बारे में विस्तार में बतलाया हुआ है। तो शिवलोक का तटस्थ स्थान होता है। मतलब शिवजी के अनेक रूप होते हैं, 11 रुद्र हैं। देवताओं में 3 प्रकार के देवता होते हैं, द्वादश आदित्य, मतलब 12 आदित्य होते हैं जिनमें इंद्र हैं इत्यादि, और फिर 8 वसु हैं, और फिर ये 11 रुद्र हैं। शिव जी के अलग अलग रूप होते हैं। हाँ, ब्रह्मा जी के माध्यम से प्रकट हुए, तो इस दृष्टि से ब्रह्मा जी के पुत्र भी कहलाते हैं, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ उनका स्थान है। जिस तरह भगवान वराहदेव ब्रह्मा जी के नसिकों से प्रकट हुए। इस दृष्टि से देखा जाए तो वो भगवान के पुत्र हुए, लेकिन फिर भी है वो भगवान, उनका स्थान श्रेष्ठ है ब्रह्मा जी से भी। तो शिव जी और भगवान श्री कृष्ण भी इस ब्रह्मांड में भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, किसी के माध्यम से प्रकट होते हैं, लेकिन उनका स्थान बड़ा निराला ही है, अपना ही उनका स्थान होता है।
गुरु गोलोक धाम चले जाते हैं, उसके बाद जो अपराध करते हैं जो, तो क्या बाद में भी गुरु को ही भोगना पड़ता है क्या?
गोलोक वृंदावन में तो वह आनंद ही आनंद है, वहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, लेकिन फिर भी गोलोक वृंदावन में भी अपने सिद्ध देह में शुद्ध भक्त को तो पता ही चलता है कि क्या हो रहा है। चिंतित तो रहते हैं कि यहाँ के बद्ध जीव भक्ति का मौका प्राप्त करके भी अभी पाप में लगे हुए हैं, इसलिए बीच बीच में भगवान ऐसे प्रतिनिधियों को बार बार भेजते रहते हैं यहाँ पर बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। है कि जब असुरों का वध होता है कृष्ण के हाथों से करकमलों से तो उनका उद्धार होता है, लेकिन प्रभुपाद के शिष्य अगर कोई उनमें से गिर भी गए तो उनको कैसे फायदा हुआ? गिरने से कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि असुरों की बात अलग थी, क्योंकि उनका कृष्ण के हाथों से करकमलों से उनकी हत्या हुई, वध हुआ, और क्योंकि कृष्ण भगवान का स्पर्श हुआ इसलिए उनका उद्धार हो गया। अगर कोई व्यक्ति भक्ति में आकर भी वो पथभ्रष्ट हो जाता है तो उसका कुछ फायदा नहीं होता, लेकिन उसने जो भक्ति की है उससे कोई नुकसान भी नहीं होता उसे। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर, अगर बाय चांस स्वधर्मम चरण अम्बुजम हरेर कोई अपने धर्मों को त्याग कर, संसारी कर्तव्यों को त्याग कर वो भगवान के शरण में आ जाता है, भजन अपक्वो तते पते ततो यदि, अगर भजन में अपक्व होने की वजह से उसका पतन हो जाता है तो फिर भी यत्र क्ववा भद्रम अभूतमुष्य किम को वार्थ आप तुम अभजताम सुधर्मतः, तो उसका क्या नुकसान होता है? अगर किसी ने भक्ति कर लिया है और बाद में भक्ति से पतन हुआ तो उसका क्या नुकसान हुआ? जो भक्ति किया उसका लाभ तो हमेशा के लिए रहेगा उसके पास, और जिन्होंने भक्ति नहीं की है कितना भी संसार में आगे बढ़े हों उनका क्या फायदा हुआ? जो अभक्त हैं जितना भी उन्होंने कुछ प्राप्त किया है उनको कुछ लाभ नहीं हुआ, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनका पतन हो भी जाए गलती से भजन में कच्चे होने की वजह से, फिर भी क्या नुकसान होता है? इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी ऐसे ही सोचकर ढीला पड़ जाना चाहिए, नहीं,